आज राधिका ने बहुत कुछ कह सुनाया था। वो कभी ये सब बातें कहना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कैसे आज अपने अल्फाजों पर कंट्रोल नहीं कर सकी। जो मुंह में आया बोलती ही चली गई। अपने मन का गुब्बार तो निकाल लिया, पर जाने अनजाने अपने शब्दों से उसे आहत कर दिया। उसे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, पर वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। सच कहूँ तो उसे माधव से किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। माधव एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो लड़की दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी जिससे उनका रिश्ता जुड़ा। वो उनके काबिल ही नहीं थी। वो कहते हैं ना, किस्मत में जिसका मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं, और जिनके नसीब में नहीं मिलते वो मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। शायद उनके नसीब भी ऐसे ही थे, तभी रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट गया। पर इसमें माधव की कोई गलती नहीं थी। उसकी किस्मत में ही माधव का साथ नहीं लिखा था। उसके नसीब में ही वो दर्द और तकलीफ लिखी थी जो उसने सही। इसके लिए माधव को जिम्मेदार ठहराना उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए वो किसी भी बात के लिए माधव को जिम्मेदार नहीं ठहराती। बस एक ही शिकायत थी उसे माधव से, कि जब वो उसे पसंद ही नहीं थे तो उन्होंने उसे झूठी उम्मीद दी ही क्यों। पर आज ये जानकर वो शिकायत भी दूर हो गई कि माधव ने उसे नहीं ठुकराया था, कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी। शायद उस वक्त माधव के मन में भी उसके लिए कुछ भाव पनप रहे थे। उसने माधव को लेकर जो महसूस किया वो भ्रम या धोखा नहीं था। शायद माधव को तो वो पसंद थी, पर उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन पर वो खरी नहीं उतर सकी। पर अब इन सबका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो भी था अब ख़त्म हो चुका है। जाने अनजाने उसने आज माधव को बहुत तकलीफ पहुंचाई होगी। माधव का व्यवहार शुरुआत से उसके लिए बहुत अच्छा था, पर उसने हर बार अपनी बेरुखी, नाराज़गी और तीखे शब्दों से माधव के मन को आहत किया। इसके लिए वो सामने से माधव से माफ़ी मांगना चाहती है, पर सामने से माधव को कैसे फेस करेगी ये नहीं पता। अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कभी इत्तेफाक से फिर माधव से मुलाकात हुई तो वो माधव से अपनी आज की बातों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगेगी, और साथ ही उनका शुक्रिया भी अदा करेगी, क्योंकि उसकी फ़ैमिली और दोस्त के बाद माधव वो पहले इंसान थे जिन्होंने उसे ख़ास महसूस करवाया है, जिन्होंने उसे मेरे रंग, हाइट के पैमानों पर तोलकर जज नहीं किया। माधव की आंखों में जो सम्मान आज भी उसे अपने लिए नज़र आता है, वो कभी एक लम्हे के लिए भी अपने पति की आंखों में नहीं दिखा था। इसलिए माधव बहुत ख़ास है उसके लिए। शायद माधव बिल्कुल वैसे हैं जैसे जीवनसाथी की ख्वाहिश कभी उसने की थी, पर अफसोस कि माधव उसके नहीं हो सके। फिर भी उसे माधव से कोई शिकायत नहीं। राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। माधव को लेकर अब तक उसके मन में जो नाराज़गी के बादल छाए हुए थे अब वो हट गए थे, और उसका चंचल मन खुले नील गगन में विचरण कर रहा था। माधव ने उसे नहीं ठुकराया था ये जानकर सुकून सा उतरा था उसके दिल में। उसने कागज़ और कलम उठाया और अपने दिल के जज्बातों को शब्दों में उकेरने लगी। एक अजनबी था वो जो हमें भाया था, इश्क के खुशनुमा एहसासों से उसने ही रूबरू कराया है। हमसे रिश्ता जोड़ने वो हमारी चौखट पर आया था, संग अपने ढेरों उमंगे भी लाया था। तेरा मेरा दिलों का नाता जाने क्यों टूट गया, जिसके साथ देखे थे जिंदगी बिताने के ख्वाब वो हाथ और साथ भी पीछे छूट गया। तू गया दूर हुआ हमसे, खुदा ही जैसे रूठ गया, जिंदगी की जो खुशियाँ थी सब हमसे लूट गया। रह गए अधूरे सारे ख्वाब, टूटे दिल के सबरमान, छोड़ गया वो तन्हा जिसे हमने न कभी पाया था। जब नसीब में जुदाई ही लिखी थी तो जाने क्यों किस्मत ने हमें उससे मिलाया था। उसने क्या ठुकराया जैसे जिंदगी बेवफा हो गई, लबों पर ठहरी मुस्कान हर दर्द की दवा हो गई। खुशियों पर गमों का पहरा लगा था, उस अजनबी के सर पर सुखों का सहरा सजा था। दुआएं दी थी हमने खुले दिल से उसे, मिटाया था उन एहसासों को जिन्हें कभी दिल में बसाया था। रास्ते यूं जुदा हुए कि मंजिलें खो गईं, वो तो चल दिए, सोनी आंखें रोती रह गईं। जुड़ गया रिश्ता फिर एक अजनबी से, सारे ख्वाब टूटे और जिंदगी आजमाइश बन गई। अपनों का साथ छूटा तब खुद को तन्हा पाया था, उनकी याद ने अकेले में हमें खूब रुलाया था। उस रिश्ते के लिए हमने अपना वजूद तक मिटाया था, पर किस्मत ने हमारे रास्तों में कांटों को बिछाया था। ना रख सके उसे संभाले जिसे नसीब ने हमसे मिलाया था। टूटा था दिल एक फिर तब खुद को हमने पाया था, उस चार लोगों के समाज ने तब भी हमें ही सुनाया था। हमेशा स्त्री ही दोषी क्यों, ये सवाल उस दिन उसके मन में आया था। छोड़ दिए हमने वो रास्ते, अब मंजिल भी जुदा है। जिंदगी अब खुशियों का मेला नहीं, गमों की सदा है। जिससे हमें शिकवा रहा वो हमारा ही खुदा है। अब तो उसने यूं ही जीना सीख लिया है, जहर के कड़वे घूंट को पीना सीख लिया है। जिंदगी की आजमाइशों से डटकर लड़ते हैं, अपने खुदा से बस एक विनती करते हैं, रखना आबाद उसे जिसे कभी दिल में बसाया था। मिले उसे हर वो खुशी जिसे हमने अपनी पलकों तले सजाया था। कभी ना हो उससे सामना जो कभी इस दिल को भाया था, रहे वो सदा सुखी जिसे कभी अपना बनाया था। राधिका के अधखुले लबों से दर्द भरी आह निकली, लबों पर मुस्कान सजाए हुए उसने आंखों में आई नमी को साफ किया और उस पेपर को फोल्ड करके ड्रॉअर में मौजूद अपनी डायरी में रख लिया। अचानक ही उसके जहर में माधव की कही बात कौन थी और उसके चेहरे के भाव कुछ बदल गए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि इनकार हमारी ओर से हुआ था, जबकि यहाँ तो सब उस रिश्ते के लिए तैयार थे। तभी तो उन्हें देखने आने कहा था। अगर मम्मी पापा को उनके रिश्ते से इनकार होता तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। और मुझे भी तो यही कहा गया था कि इनकार उन्होंने किया था और वजह मेरा रंग और कम हाइट है। क्या यहाँ कुछ है जो मुझे नहीं पता या उन्हें कोई गलतफहमी हुई है? माथे पर बल डाले वो कुछ पल अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाती रही, पर जब खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो उसने आशुतोष जी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। पर यहां भी एक समस्या मुंह बाय उसके सामने आ खड़ी हुई कि उनसे ये बात कैसे की जाए। बहुत सोचने समझने के बाद उसने पहले अर्पिता से बात करने का फैसला किया। अप्पू, अंदर आ जाऊं? राधिका ने उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए सवाल किया। अगले ही पल अंदर से अप्पू की खनकती हुई आवाज आई। आ जाओ दीदी, बाहर खड़ी होकर पूछ क्या रही हो? राधिका दरवाजा खोलकर अंदर आई तो नजर बेड पर पड़ी, जहां अप्पू अपनी कॉपी किताब फैलाए पढ़ रही थी। पर राधिका के आते ही वो सब समेटने लगी थी। तुम पढ़ रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? तुम पढ़ लो, मैं तुमसे कल बात कर लूंगी, राधिका ने उसे कॉपी किताब समेटते देखकर झिझकते हुए कहा। अनजाने में उसे पढ़ते हुए डिस्टर्ब जो कर दिया था उसने, वही उसकी बात सुनकर अप्पू ने चिढ़ते हुए मुंह बना लिया। हाँ, एक रात पढ़कर तो जैसे मैं कलेक्टर ही बन जाऊंगी ना। पढ़ लिया मैंने, मुझे जितना पढ़ना था। मैं वैसे भी अब पढ़ते पढ़ते उकता गई थी। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, आइए बैठिए। अप्पू का जवाब सुनकर राधिका कुछ सामान्य हुई और उसके पास आकर बैठ गई। बताइए, मुझसे क्या बात करने आई थी आप, जिसके लिए आपने रात के वक्त मेरे कमरे में आने का कष्ट किया? क्योंकि ये काम तो मैं करती हूँ, अप्पू ने मजाकिया लहजे में कहा और हौले से हंस पड़ी। आदत जो थी उसकी, रात बेरात जब मन करता राधिका के कमरे में टपक पड़ती थी, और सबसे छोटी बहन थी तो सब छूट भी उसे ही मिली थी। राधिका भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। तभी उसे अपने यहाँ आने की वजह याद आई और चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। अप्पू, माधव जी से जब मेरे रिश्ते की बात चली थी तो इनकार उन्हीं की तरफ से हुआ था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से मना किया गया हो और मुझे इस बारे में कोई खबर ही नहीं? राधिका का सवाल सुनकर अप्पू चौंक गई। उसने आश्चर्य से आंखें फैलाकर उसे देखा। ये क्या कह रही है, और आज अचानक आपके मन में ये सवाल कहाँ से आ गया? आपको याद नहीं उन्होंने ही तो इनकार किया था?
याद तो मुझे है, पर माधव जी ने आज ऐसा कुछ कहा जिसके बाद मुझे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है। अगर तुम इस बारे में कुछ जानती हो तो बता। ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं मालूम, जो आपको बताया था वही तो हमें भी बताया था कि आपको देखने के बाद लड़के वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। पापा कह रहे थे रंग रूप और कदकाठी तो एक बहाना है, असल में दहेज के कारण रिश्ते से मना हुआ है। और रुबीना आंटी तो मम्मी से कह रही थी कि वो पहले ही रिश्ते को लेकर टालमटोल कर रहे थे, क्योंकि उनकी मम्मी को इस बात से परेशानी थी कि हम सिर्फ बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं। कहीं मम्मी जैसे आपकी भी लड़कियां हुई तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? बस इतनी ही बातें सुनी थी मैंने, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। आप पापा से पूछ लीजिए, शायद वो आपको वो बात बता सकें जो आप जानना चाहती हैं। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अप्पू ने जितना उसे याद था सब उसे बता दिया और अंत में मुफ्त की सलाह भी दे डाली। राधिका ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी। पर दीदी, उस बात को तो सालों बीत गए, और आपने ही तो कहा था कि उनकी शादी हो गई है, वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, फिर अब इन सब सवालों का क्या मतलब हुआ? अप्पू आंखें बड़ी बड़ी किए सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सच है कि उनकी शादी हो चुकी, वो अपनी लाइफ में खुश है, अब कुछ भी नहीं बदलने वाला। मेरा और उनका मिलना नामुमकिन है और मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है, वो जो उन्हें पता है या वो जो मुझे बताया गया। इसके बाद वो पल भर ठहरी, फिर बेड से नीचे उतरते हुए बोली, तुम सो जाओ और पापा से इस बारे में कोई बात मत करना, मैं खुद मौका देखकर उनसे अपने सवालों के जवाब मांग लूंगी। अप्पू ने हामी भरी और उसकी गर्दन पर अपनी बाहों को लपेटते हुए उसके गले से लग गई। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, अप्पू की ये हरकत उसके लबों पर मुस्कान बनकर बिखर गई। गुड नाइट, राधिका ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अप्पू धम्म से बिस्तर पर गिर पड़ी और सीलिंग पर लटके पंखे को घूरते हुए मन ही मन कहने लगी, कितना अच्छा होता अगर उनकी शादी नहीं हुई होती और आपकी उनसे शादी करवा देते, आप खुश रहती उनके साथ। अर्पिता के चेहरे पर मायूसी के बादल घिर आए। वहीं राधिका अपने कमरे में तो लौट आई, पर अब भी माधव की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उसे किसी करवट चैन नहीं आ रहा था।